ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಜ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಮನೆ ಬಿ ಕೆ ಗೌರವ್ ಭಾಯಿ ಜಿ ಪಂಚಕುಲಾ ಸೇ ಹೈ. ಆಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೇನರ್ ಹೈ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಮೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೇ. ಹಮ್ ಆಪ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ. ಮೈ ಬಹನೋ ಸೇ ಅನುರೋಧ ಕರುಂಗಿ ಕಿ ವೋ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛೋ ಸೇ ಬೈಜಿ ಸೇ ಭಾಯಿ ಜಿ ಕಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕರೆ. ಆಜ ಭಾಯಿ ಜಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಟಾಪಿಕ್ ಹೈ, ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಹೈ. ಆಪ್ ಬಹುತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕರೆಂಗೆ. ಹಮ್ ಸಭಿ ಕರ್ತಲ್ ಧ್ವನಿ ಸೇ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ, ಅಭಿವಾದನ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ, ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಹನೋ ಕಾ. ಅಬ್ ಹಮ್ ಭಾಯಿ ಜಿ ಸೇ ಸುನೆಂಗೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೆ ಊಪರ್. ಹಮಾರಿ ಲೈಫ್ ಮೇ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ರೋಲ್ ಹೈ. ಭಾಯಿ ಜಿ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ಕಾ ಟಾಪಿಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ರಮಣೀಕ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ಫುಲ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಬೋರಿಯತ್ ಕಾ ಆಪ್ ಅನುಭವ ನಹೀ ಕರೆಂಗೆ, ತೋ ಸಾಥ್ ಬನೇ ರಹೆಂಗೆ. ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರವ್ ಭಾಯಿ ಜಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಥೋಡಾ ಮುಸ್ಕುರಾಕರ್ ಬೋಲ್ ದೀಜಿಯೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕೆಸೆ ಹೈ ಜಿ ಆಪ್ ಸಭಿ? ಹಾಥ್ ಉಠಾಕರ್ ಬೋಲ್ ದೀಜಿಯೆ ಕಿ ಆನಂದ್ ಆನಂದ್ ಮೇ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಹೈ. ಔರ್ ಬೋಲ್ ದೀಜಿಯೆ ಆಬು ಕಿಸ್ ಪಾವನ್ ಧರ್ತಿ ಕೋ ಎಂಜಾಯ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚಿ ಬಾತೆ ಸೀಖನೆ ಕೋ ಮಿಲ್ ರಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆನಂದ್ ಡಬಲ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಜಿ, ಆಜ್ ಕಾ ಟಾಪಿಕ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಖೇಲ್ ಭಾವನಾ, ಇಕಟ್ಟೆ ಹೋನೆ ಕಿ ಭಾವನಾ. ಅಗರ್ ಹಮ್ ಗೇಮ್ ಖೇಲ್ತೆ ಹೈ ವಹಾ ಭಿ ಇಕಟ್ಟಾ ಹೋನಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ. ಔರ್ ಘರ್ ಪರ್ ಅಗರ್ ಚಾರ್ ಲೋಗ್ ಹೈ, ಪಾಂಚ್ ಲೋಗ್ ಹೈ, ಘರ್ ಪರ್ ಭಿ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಿ, ಏಕ್ ಟೀಮ್. ಔರ್ ಉಸ್ ಟೀಮ್ ಕಾ ಭಿ ಇಕಟ್ಟಾ ಹೋನಾ ಜರೂರಿ ಹೈ. ತೋ ಶುರುವಾತ್ ಕರ್ನೆ ಜಾ ರಹೇ ಇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಿ. ಔರ್ ಮೈ ಚಾಹೂಂಗಾ ದೋ ಅಚ್ಚಿ ಲೈನೆ ಆಪ್ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಬೋಲೆ. ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಬೋಲೆಗಾ ಜಿ ದೋ ಅಚ್ಚಿ ಲೈನ್ ಶೇರ್ ಕಿ? ಸಭಿ ತಯಾರ ಹೈ? ಚಲಿಯೆ ಬೋಲೆಂಗೆ ಮೇರೆ ಸಾಥ್. ಯೇ ಮತ್ ಪೂಛೋ ಕಿತನಾ ಔರ್ ಚಲನಾ ಹೈ, ಹಮನೆ ತೋ ಮಿಲ್ಕರ್ ಉಡನೆ ಕಾ ಇರಾದಾ ಕಿಯಾ ಹೈ. ವಿಜಯೀ ಥೇ, ವಿಜಯೀ ಹೈ ಔರ್ ಸದಾ ವಿಜಯೀ ರಹೆಂಗೆ. ಯೇ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಹಮ ಸಬ್ಸೆ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಯೇ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಹಮ ಸಬ್ಸೆ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿಯಾ. ಸದಾ ವಿಜಯೀ ಥೇ, ವಿಜಯೀ ಹೈ ಔರ್ ವಿಜಯೀ ರಹೆಂಗೆ. ಯೇ ಕಿಸ್ನೇ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಹೈ? ಯೇ ಭಗವಾನ್ ನೇ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಯಾದ ರಖೇಂಗೆ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ, ಜಬ್ ಭಿ ಲಗೇ ಕಿ ಹಾರ್ ಸಾಮನೇ ಹೈ ತೋ ಯಾದ ಕರ್ ಲೇ, ಭಗವಾನ್ ನೇ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಜೀತ್ ತುಮಾರಿ ಹೈ. ಬೋಲ್ ದೇಂಗೆ ಜೀತ್ ಮೇರಿ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಜಿ. ಟೀಮ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ? ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಟೀಮ್ ಕಾ, ಟೋಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೋರ್. ಸಭಿ ಕೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕುಛ್ ಜಾದಾ ಪಾನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ. ಏಕ್ ತೋ ಯೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಆಯೆಂಗೆ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ಸೇ ಕುಛ್ ಬೆಟರ್ ಭಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ? ತೋ ದೇಖಿಯೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Together each one achieves more. ಯದಿ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಮೇ ಕಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಜಾದಾ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಕೈಸೆ ಕಾಮ ಕರ್ನಾ ಜರೂರಿ ಹೈ? ಟೀಮ್ ಕೇ ಅಂದರ್ ಇಕಟ್ಟೆ ಹೋಕರ್. ಔರ್ ಟೀಮ್ ಕಿ ಏಕ್ ಔರ್ ಅಚ್ಚಿ ಚೀಜ ದೇಖಿಯೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೀಮ್? ಟೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಮಿಲ್ಕರ್ ಕುಛ್ ಕರ್ನಾ. ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಕುಛ್ ಕರ್ನಾ ತೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಬಹುತ್ ಜಾದಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೇ ಚೀಜ ಹೈ ಇಕಟ್ಟೆ ಹೋಕರ್, ಮಿಲ್ಕರ್ ಕುಛ್ ಕರ್ನಾ. ಇಕಟ್ಟೆ ಯಾನಿ ಕಿ ಸೋಚ ಮಿಲ್ನಾ, ತಾಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋನಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೋನಾ. ಔರ್ ಯದಿ ಟೀಮ್ ಕಾ ಏಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಭಿ ವೀಕ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ತೋ ಟೀಮ್ एक मेंबर भी वीक हो जाता है तो टीम कमजोर हो जाती है। आपको ध्यान होगा अगर इतिहास को खोलते हैं, रामायण अगर पढ़ी है हमने सुनी है, तो रावण बहुत शक्तिशाली था, पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन उसकी टीम का एक मेंबर, जानते हैं जी कौन, उसने साथ छोड़ दिया और रावण इतना ज्ञानी पंडित होते हुए भी हार गया। और अगर श्री राम की टीम को देखें तो सभी लोग पूरे दिलो जान से श्री राम के साथ थे। और क्या दिखाता है रामायण के अंदर, श्री राम की जीत हुई। दिस इज ए टीम एफर्ट, सबका एफर्ट था, सबकी भावना एक थी, इसी कारण विजयी हुए। यही सिखाना चाहते हैं कि यदि जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो एक बात बहुत जरूरी है, सबका, बोल दीजिए साथ में, सबका इकट्ठा होना, सबकी कॉपरेशन, टीम का एकजुट होना बहुत जरूरी है। और इतिहास में यह भी सुना होगा, बड़े बड़े राजा जिनके बड़े बड़े किले थे, बहुत शक्ति थी, अस्त्र शस्त्र थे, केवल उनकी पूरी सेना में से केवल एक या दो सैनिक गद्दार निकल गए और रिजल्ट क्या हुआ जी, पूरा राज्य हार गए। इसका मतलब टीम का, सबका एक होना बहुत बहुत जरूरी है। और कुछ अब अच्छी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं कि टीम के अंदर स्पिरिट बढ़ाने के लिए, टीम भावना बढ़ाने के लिए, भावना बढ़ाने के लिए हमें क्या करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हैं। एक जैपनीज राइटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पानी की एक बूंद केवल एक बूंद है, यदि करोड़ों बूंदें मिल जाएं तो सागर का रूप ले लेती हैं, और पानी की एक बूंद शायद किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, लेकिन समुद्र चाहे तो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, ये ताकत है। एक सिपाही ये कहता है कि मैं अकेला एक सिपाही हूं, मैं केवल एक घर की रक्षा कर सकता हूं या किसी एक छोटी चीज को बचा सकता हूं, यदि हम सारे सिपाही मिल जाएं तो हम एक आर्मी हैं, हम एक सेना हैं, हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं, ये हमारी ताकत बन जाती है। सिर्फ ताकत किस कारण बन रही है जी, ताकत किस कारण बन रही है, सिर्फ टीम के कारण। एक पेड़ कहता है मैं केवल एक अकेला पेड़ हूं, मेरे ऊपर शायद दो तीन घोंसले बनाकर 10-12 चिड़िया रह सकती है, यदि हम लाखों पेड़ मिल जाएं तो हम पेड़ नहीं, हम जंगल बन जाएंगे और लाखों करोड़ों जानवरों को, पक्षियों को हम पनाह दे सकते हैं। ये ताकत बढ़ जाती है। इसलिए कैसे रहना बेनिफिशियल है जी, कैसे चलना बेनिफिशियल है, टीम के साथ। एक बहुत अच्छी बात आपने सुनी होगी, यदि तेज चलना है तो अकेले चलिए, और यदि दूर तक चलना है तो मिलकर चलिए, मिलकर चलिए, मिलकर चलिए। कैसे चलना चाहेंगे, कैसे चलना चाहेंगे, दूर तक चलना है तो मिलकर चलना चाहिए, ये ब्रह्मा कुमारी बताना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, लीड बाय एग्जांपल, यानी कि अपने एक्शन से, बोलकर नहीं, अपने एक्शन से कर सिखाइए लोगों को। कौन कौन इस बात से सहमत है कि जो हम कहते हैं उसका प्रभाव कम पड़ता है, जो हम करते हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है? सभी सहमत हैं जी, एवरीबॉडी इज एग्री। कथनी से करनी ज्यादा काम करती है। मैं आपको कुछ रियल घटनाएं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। एक टीम के अंदर यदि एक प्लेयर अपने सीनियर का रिगार्ड नहीं करता है और उसके जूनियर्स देख रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद उनके जूनियर्स सीनियर का तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, साथ साथ इस प्लेयर का भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम पड़ गया है कि यहां कोई किसी के रिस्पेक्ट नहीं करता है, डबल नुकसान हो जाता है। यदि मैं चाहता हूं मेरे जूनियर्स मेरी रिस्पेक्ट करें तो मुझे क्या करना होगा, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। और ध्यान दीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बच्चा घर के अंदर, जैसे खिलाड़ी एक जूनियर खिलाड़ी अपने सीनियर खिलाड़ी से सीखता है, घर में बच्चा किनसे सीखता है, पेरेंट्स से। एक बच्चा अपने पिता से सीखता है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से सीखता है। और आपको मैं एक रियल घटना बताने जा रहा हूं, एक भाई एक छोटा बच्चा, उसकी बड़ी बहन और उसकी मदर ने सेंटर पे आना शुरू किया, तीन लोगों ने, और करीब करीब 10-12 दिन उन्होंने रेगुलर आना शुरू किया, मेडिटेशन कोर्स किया, फिर मुरली क्लास सुननी शुरू की प्लस मेडिटेशन करना शुरू किया, उनके बिहेवियर में कुछ चेंज महसूस हुआ। तो मैंने सबसे छोटा बच्चा जो करीब शायद 5-6 साल का था, मैंने उससे पूछा, बच्चे आप 10-12 दिन से रोज सेंटर पे आ रहे हैं, आपके अंदर कोई चेंज आया? क्या पूछा मैंने, आपके अंदर कोई चेंज आया? उसने कहा, अंकल मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब से मम्मा ने आना शुरू किया है, मम्मा गुस्सा नहीं करते हैं, मम्मा नहीं डांटते हैं, और अब दीदी भी मुझे नहीं डांटती है, अभी दीदी भी नहीं डांटती है। किसका इफेक्ट पड़ रहा है जी? देखने का फर्क पड़ रहा है। बच्चा घर में बड़ों को देखता है, यदि बड़े बदलते हैं तो छोटे बदलते हैं। यही टीम, यही सिखाना चाहते हैं कि जो मुझे टीम के अंदर लेके आना है वो मुझे करना पड़ेगा, वो मुझे बोलकर नहीं सिखा सकता। एक रियल घटना और बताने जा रहा हूं। एक भाई साहब ने नई नई गाड़ी ली और गाड़ी लेकर जहां उनकी फैमिली रहते थे वहां पर वो गाड़ी लेकर गए और वहां जाकर पूरी फैमिली को गाड़ी में बिठाया और पूरे शहर का चक्कर लगाया और फिर गाड़ी को अपनी फैमिली के पास छोड़कर वापिस जहां जॉब करते थे वहां चले गए। 2 दिन के बाद उनकी वाइफ का फोन आता है, आप ये क्या कर गए। वो भाई साहब बड़े हैरान, मैं तो अच्छी बड़ी गाड़ी घर छोड़कर आया था, मैडम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैडम ने बोला, जब आपने गाड़ी चलाई आपने हर राउंड अबाउट के ऊपर गलत टर्न किया, आपने किसी रेड लाइट पे गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाई, आपने हर रेड लाइट जंप की, और आज आपका बेटा गाड़ी लेकर गया था, उसने किसी रेड लाइट के ऊपर गाड़ी नहीं रोकी, हर राउंड अबाउट पे गलत मोड़ काटा, जब आपको गलत करते देखा वो भी गलत गाड़ी चला रहा है। अगले हफ्ते वो फादर वापिस आए, उन्होंने पूरी फैमिली को फिर से गाड़ी में बिठाया और हर रेड लाइट पे गाड़ी रोकी, हर जगह प्रॉपर टर्न लिया, और उस दिन के बाद उन्होंने कहा, कहते कि मुझसे मेरे फैमिली वाले गलत ना सीखें, इसलिए मैं हमेशा राइट तरीके से गाड़ी चलाता हूं, मैंने ठीक था, अपने परिवार को सिखाने के लिए मैं ठीक हुआ हूं। ये एक तरीका है। यदि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, पहले किसको बदलना है? पहले खुद को चेंज करना है। खुद के एक्शन सुधारने हैं मुझे। ये ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं, दूसरों को नहीं बदलिए, खुद को बदलिए। खुद को बदलेंगे तो पूरी दुनिया, पूरा जीवन, पूरा विश्व बदलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एक और अच्छी बात के साथ कि बोलकर सिखाना कम काम करता है, कर सिखाना ज्यादा काम करता है। आपको रियल घटना बताने जा रहा हूं। ये हिमाचल की घटना है। एक बहुत बड़े ऑफिसर, उन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की। आप सभी जानते हैं सफाई अभियान, स्वच्छ भारत बहुत पॉपुलर हो रहा है, मोदी जी का बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। तो उसके अंतर्गत एक झील को साफ करना था, तो वहां के बहुत बड़े ऑफिसर ने जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज आसपास के एरिया में थे सबके सभी ऑफिसर्स को, सभी वर्कर्स को बुला लिया, और क्योंकि मौसम हल्की हल्की सर्दी का था तो कुछ एक ने तो कोट पहना हुआ था, अच्छे स्वेटर्स पहने हुए थे, कुछ ने शॉल ओढ़ा हुआ था, कुछ एक तो ग्लव्स तक भी पहने हुए थे, और सबको किस लिए बुला लिया जी? झील की सफाई के लिए। आप समझ सकते हैं हल्की हल्की ठंड में हिमाचल के अंदर पानी कैसा होगा, अच्छा खासा ठंडा पानी। और जब शुरुआत, और ऑफिसर ने जो जिन्होंने इस स्वच्छ अभियान की शुरुआत की, और उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, करीब 200-250 लोग वहां पहुंच गए थे, सबको स्वच्छता का महत्व बताया कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, और सब कुछ बताने के बाद सबको कहा कि यहां पर कुछ ना कुछ टूल्स रखे हुए हैं, इनको लेकर हमें झील साफ करनी है। लोग बहुत पहुंच गए थे, कुछ को तो टूल मिल गया, कुछ को क्लीनिंग के लिए टूल भी नहीं मिला। जिसको टूल मिला उन्होंने टूल ले लिया और झील के चारों तरफ फैल गए। और ये सब होने के बाद जिन ऑफिसर ने सबका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो अपनी गाड़ी में चले गए। ये देखकर बाकी लोगों ने कहा, देखो हो गई सफाई, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो तो बोलकर गाड़ी में चले गए, हो गई सफाई। एक मिनट के बाद वही ऑफिसर गाड़ी से बाहर आए, शायद उन्होंने सुन लिया होगा, सुना नहीं था। ऑफिसर गाड़ी से बाहर आए, अपने शूज रिमूव करके, सॉक्स रिमूव करके, पैंट को ऊपर चढ़ाकर और आकर सबको साथ में बोलकर जय बजरंग बली बोलकर वो सबसे पहले झील के अंदर गए, सबसे पहले। और जैसे ही वो झील के अंदर गए बिना टूल लिए और सफाई के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, पूरे के पूरे लोग जो 250 लोग वहां इकट्ठे हुए थे, पूरे ऑफिसर्स सबके सब, जिसने किसी ने कोट पैंट पहना, कोई ड्रेस पहनी, सबके सब तुरंत झील में उतर गए और कोई टूल के साथ कोई बिना टूल के सबने सफाई करनी शुरू कर दी। और यकीन मानिए 3 घंटे में पूरी झील को क्लीन कर दिया गया। ये है एक्शन से सिखाना, बोलकर नहीं सिखाना। ताली बजा सकते ऑफिसर के लिए जी, कि हम जो चीज दूसरों में लाना चाहते हैं पहले 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 जोर से आवाज आनी चाहिए, पहले पहले खुद पे करें। दिस इज लीड बाय एग्जांपल। और अभी जो बहनें माताएं यहां बैठी हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, उनके काम की बात है। वैसे तो सबके लिए है, उनके लिए थोड़ी ज्यादा काम की बात है। एक बच्चा अपने घर के अंदर अपने पेट की पिटाई कर रहा था, क्योंकि उसके पेट ने उसका केक खा लिया। केक छोड़कर चला गया था और पेट ने केक खा लिया, और बच्चा अब उस पेट को अब्यूज कर रहा है, गलत बोल रहा है, डांट रहा है, पिटाई कर रहा है। और इतने में उसकी मम्मा आई, मम्मा ने बेटे का कान पकड़ा और कहा, ऐसे बोलते हैं, तेरे को बात करनी नहीं आती है, तेरे को तमीज नहीं है, ऐसे गाली देते हैं। सोचिए, हम बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि आराम से बात करे, और हमारी टोन कैसी है सिखाने की? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मैं बच्चे को क्या सिखाना चाहता हूं, कैसे बात करे बच्चा? शांति से। लेकिन मेरी टोन कैसी है समझाते हुए? जब मैं खुद ही गुस्से में बात कर रहा हूं, मैं बच्चे को क्या सिखा सकता हूं कि कैसे बात करे? इसका मतलब, अगर मैं बच्चे को सिखाना चाहता हूं कि आराम से बात करे, तो टोन कैसी होनी चाहिए? देखिए, सिर्फ भाई की आवाज आई, बहनों की आवाज नहीं आई। कैसी आवाज आनी, बहनों की आवाज क्या आनी चाहिए, क्या बोलेंगी बहनें? अगर सिखाना है कि आराम से बात करें, तो उस वक्त टोन कैसी होनी चाहिए? आराम से, टोन लो होनी चाहिए, तभी हम उनको सिखा पाएंगे कि गुस्सा नहीं करना है, आराम से बात करनी है। चलिए, अभी मैं एक और अच्छी गुस्से पर एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी कराने जा रहा हूं। आप सभी रेडी एक्टिविटी के लिए? रेडी? आपको चाय पीनी है। आप सबने अभी ज्ञान सरोवर के अंदर किन्होंने चाय या कॉफी ली है? सबने ली है जी। आपको अंदाजा है वहां एक ड्रम रखा हुआ है जिससे चाय मिल, जैसे नॉब घुमाकर चाय लेते हैं, तो सभी के कप उठा लीजिए अपने हाथ के अंदर। सभी को कप उठाना है जी। गिलास, हाँ, आपका दिल है गिलास ले सकते हैं, जैसा आपका दिल हो। सभी को ऐसे करना है जी, हाथ में क्या है, एक गिलास। और अभी थोड़ी चाय डलवा लीजिए, आगे करके चाय डलवा लीजिए। हाँ जी, जिनका कप भर गया वो पीछे ले सकते हैं। और अभी क्या करना है, आराम से जाकर बैठकर चाय पीनी है। और जैसे आप जा रहे हैं कुर्सी पर बैठने के लिए, अचानक पीछे से धक्का लगता है। धक्का लग रहा है सबको? थोड़ा करिए एक्टिंग, थोड़ा सा। क्या लगा है? थोड़ा सा और अच्छा धक्का लगा। कैसा धक्का लगा है? अभी लगा धक्का। अभी क्या होने वाला है जी, चाय गिर गई। अब आपसे एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। कप को ऐसे रखिए, कप नहीं छोड़ना है। हाँ, अभी बाकी चाय, थोड़ी चाय तो है उसके अंदर। अभी आपसे सवाल है कि चाय क्यों गिरी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि चाय क्यों गिरी? आपको जवाब देना है जी, क्योंकि धक्का लगा। और बताइए, बहुत अच्छा जी, और बताइए चाय क्यों गिरी? और बताइए, और क्या कारण हो सकते हैं कि चाय क्यों गिरी? मैम कम आ रही, जोर से बोलिए। हाँ, देखिए बहन जी के लिए ताली, एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत सिंपल जवाब, चाय इसलिए गिरी, चाय इसलिए छलकी, क्योंकि कप के अंदर चाय थी। क्योंकि कप के अंदर, अगर कप के अंदर शरबत होता तो क्या छलकता? अगर कप के अंदर इत्र होता तो क्या छलकता? इत्र। ये एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। हम ऐसे ही कहते हैं कि उसके कारण गुस्सा आया, उसके कारण गुस्सा आया। गुस्सा तो इस कप में भरा हुआ है, वो तो धक्का लगा। यहाँ गुस्सा भरा हो तो गुस्सा छलकेगा, अगर यहाँ प्यार भरा हुआ है तो क्या बाहर छलकने वाला है? प्यार। गुस्से का दोष जिसने धक्का दिया उसका दोष नहीं है, यही गुस्सा भरा हुआ है। और अगर यहाँ शांति भरी होगी और कोई धक्का लगेगा तो क्या निकलने वाला है? शांति निकलने वाली है। और प्यार भरा होगा तो प्यार निकलने वाला है। इसलिए किनको दोष नहीं दें कि उनके कारण गुस्सा आया, गुस्सा तो कहाँ भरा हुआ है जी। इसलिए और आप इस प्रांगण में, ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में आए हैं, तो आपसे एक निवेदन है, इस सुंदर प्रांगण के अंदर जहाँ भगवान सिखाते हैं कि बच्चों इसको चेंज करो, गुस्से को छोड़, शांति और प्यार भरकर यहाँ से लेकर जाइए। कौन कौन प्लानिंग करके आए हैं जी, गुस्सा छोड़कर ही जाएंगे यहाँ से? एक बार तालियां, बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी, वंडरफुल। और आगे बढ़ते हैं, टीम का हर मेंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे पूछें घर के सभी मेंबर में से कोई ऐसा मेंबर है जिसकी कीमत नहीं हो, ऐसे ही टीम के किस किस मेंबर की कीमत है? हर मेंबर की कीमत है। जैसे यहाँ चेन दिखाई हुई है, चेन के हर लिंक की कीमत है। यदि एक लिंक कमजोर हो जाए तो पूरी चेन की ताकत कमजोर हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही टीम के हर मेंबर की कीमत है। और एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, एक बार बॉडी पार्ट्स की आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। पांव ने कहा, टांगों ने कहा, मैं ही हूं जो तुम्हें हर जगह लेके जाता हूं, मेरे कारण ही तुम दौड़ सकते हो, मेरे कारण ही चल सकते हो, सबसे ज्यादा काम तो मैं करती हूं। फिर हाथों ने कहा, तुम कुछ नहीं करती, तुमसे ज्यादा बड़ा तो मैं हूं, और सारा लैपटॉप पे मैं काम करता हूं, मेरे कारण लैपटॉप पे काम होता है, मेरे कारण मोबाइल पे काम होता है, मेरे कारण लोग खा पाते हैं, मेरे कारण लोग गाड़ी चला पाते हैं, सबसे ज्यादा काम तो मैं करता हूं। उसके बाद आंखों की बारी आई, आंखों ने कहा, पूरे दिन में सुबह से लेकर जब तक रात को सोते नहीं तब तक लगातार मैं काम करती हूँ, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेती, सबसे ज्यादा काम तो मैं करती हूँ। फिर दिल महाशय कहाँ शांत रहने वाले थे, वो भी बोल पड़े, बोले, आंख बहन, तुम तो रात को सो जाती हो, तुम तो आंखें बंद हो जाती हैं, मैं तो 24 घंटे धड़क रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल रेस्ट नहीं करता, मैं तो सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पेट महाशय ना, वो चुपचाप बैठे थे, कहते ये कुछ नहीं करते हम। और हाथ ने कहा, मैं क्यों खिलाऊं इस पेट को, मेरे को जरूरत नहीं है। दांतों ने कहा, मैं क्यों चबाऊं पेट के लिए। और सभी ने, दांतों ने और हाथ ने पेट के लिए काम करना बंद कर दिया। और क्या हुआ होगा जी, जब अन्न का निवाला हाथ से अंदर ही नहीं जा रहा, क्या हुआ होगा? धीरे धीरे पेट को भोजन मिलना कम हुआ, शरीर की शक्ति कम हुई और बॉडी का हर पार्ट कमजोर होना शुरू हो गया। और फिर रियलाइज हुआ हाथ को कि हमें ताकत कहां से मिल रही थी, पेट से ही मिल रही थी। दांतों को कब एहसास हुआ, जीभ को कब एहसास हुआ, जब एनर्जी खत्म होने लगी तब एहसास हुआ कि ऊर्जा पेट से मिल रही थी। ये बताना चाहते हैं कि घर का हर मेंबर इंपॉर्टेंट है, टीम का हर मेंबर इंपॉर्टेंट है। और उनकी इंपॉर्टेंस आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप इंपॉर्टेंट हैं? आपको प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कैसे प्रूव करेंगे? यदि हम घर के मेंबर की बात सुनते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये नहीं कहा जा रहा कि उनकी बात मानी जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी बात को काटा नहीं जाए, उनकी बात सुनी जाए। यदि आप घर के हर मेंबर की बात सुनते हैं, उन्हें ये फील होता है, वी आर पार्ट ऑफ द टीम, वी आर पार्ट ऑफ द मेंबर, वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि वो हमारे मेंबर हैं। और इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हर मेंबर की बात सुनी जाए। सोचिए अगर किसी एक कोई एक मेंबर कुछ कह रहा है और हम कहते नहीं नहीं आप तो चुप ही रहो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सोचिए एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उसका लिंक उस परिवार से, उस टीम से खत्म हो जाएगा। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर परमपिता परमात्मा शिव ने मुरलियों के द्वारा बताया है कि आप किसी की बात को सुने, वो आपकी टीम का मेंबर है, आपकी फैमिली का मेंबर है, क्योंकि बाहर का सदस्य है, उसकी बात को काटे नहीं, उसकी बात को रिगार्ड दें, रिस्पेक्ट दें। यही है उसको अपनी टीम के अंदर जोड़ने का तरीका। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक और रियल घटना बताने जा रहा हूं कैसे टीम को सम्मान देना है, कैसे टीम को जोड़ना है। ये एक रियल घटना, एक बैंक के अंदर एक भाई साहब की ट्रांसफर हुई क्लेरिकल पोस्ट के ऊपर, और उस बैंक के अंदर चार लोग थे, एक मैनेजर, एक सीनियर क्लर्क, एक जो नए क्लर्क भर्ती हुए और एक हेल्पर। जो नए क्लर्क भर्ती हुए वो कोई काम नहीं करते थे, कोई काम, जो काम दो बहुत धीरे 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 आराम से करते थे, बहुत टाइम लगाते थे, काफी गलतियां होती थी उनके काम के अंदर। तो बैंक मैनेजर ने कुछ दिन तो देखा और उस नए क्लर्क से कहा कि भाई साहब आपको कुछ हफ्ते से देख रहा हूं, आपका काम बहुत परफेक्ट नहीं हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है आप ध्यान से काम करिए और स्पीड से काम करिए। तो उस नए क्लर्क ने कहा, कहता साहब हम तो ऐसे ही काम करेंगे, कुछ भी कर लो हम नहीं बदलने वाले, पिछले बैंक में भी ऐसे ही करते थे, यहां भी ऐसे ही काम करेंगे, आपका दिल करे तो कंप्लेंट कर लो, जहां चाहो कंप्लेंट कर लो। अब मैनेजर साहब सकते हैं कि अब कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, तो ओपनली बोल दिया। और क्लर्क ने कहा, इस जिस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है, इस मोहल्ले के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, यहां पे आसपास जो फैक्ट्रियां लगी हैं या जिम्मेदार लगे हुए हैं, जितने बड़े बड़े अफसर हैं सबको मैं जानता हूं, इवन बैंक के अंदर भी बड़े अफसर को जानता हूं, आप मेरी कंप्लेंट करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अब मैनेजर साहब सोचे, टीम का पार्ट है, कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे टीम से बांध के रखा जाए, कैसे इससे काम कराया जाए। कुछ दिन तक सोचते रहे, फिर एक दिन मैनेजर साहब ने उस नए क्लर्क बहू को बुलाया, कहते भाई एक बात तो बताओ, तुम्हें कौन कौन जानता है यहां पर। तो वो क्लर्क साहब पूरे से खुश होकर, ये भी जानता है जी, यहाँ के एसपी साहब भी जानते हैं, यहाँ के ये अफसर भी जानते हैं, ये बड़े यहाँ के पॉलिटिशियन भी जानते हैं, ऐसे करते करते खूब लंबी लिस्ट बना दी उन्होंने। तो मैनेजर साहब बोले, चलो और कुछ ना सही, इनके खाते तो खुलवा दो बैंक के अंदर, बैंक के अंदर कैश तो ले आओ, अकाउंट तो खुलवाओ। वो बोला, भाई जी ये मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, मैं सबको जानता हूँ, सबके अकाउंट खुलवा देता हूँ। और देखिए ऐसे काम पे लगाया, और उसके बाद पूरे जितने एरिया के अंदर जितने लोग थे मैक्सिमम अकाउंट खुल गए और बैंक के पास खूब कैश आ गया और बैंक की रेटिंग पहले से बेटर हो गई। ताली बजती है जी मैनेजर साहब के लिए। ये है कि टीम से किसी को टूटने नहीं देना, किसी को छूटने नहीं देना, साथ लेकर चलना है। क्योंकि टीम जब तक आगे बढ़ेगी, जब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो लंबा चलेंगे, दूर तक चलेंगे। और आपको एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूं, कई बार हमें टीम के मेंबर्स की कीमत नहीं पता होती। एक और घटना, चार्ल्स प्लंब, ये फाइटर प्लेन चलाते थे, बॉम्ब्स गिराते थे जहां लड़ाई होती थी। एक बार ये जा रहे थे तो एक व्यक्ति इनको मिला रास्ते में। उस व्यक्ति ने कहा, आप चार्ल्स प्लंब है ना, आपके जब आप वियतनाम में थे आपके फाइटर प्लेन को हिट कर दिया था दुश्मन की मिसाइल ने और आपका प्लेन क्रैश हो गया था। तो चार्ल्स प्लंब ने कहा, हाँ तुमने मुझे कैसे पहचाना। कहता सर, और आप पैराशूट से कूदे थे और आप, मैं समझता हूं कि पैराशूट खुला था। तो चार्ल्स प्लंब ने कहा, हाँ जब मैं वियतनाम में था तो फाइट पे एक मिसाइल लगी थी, मेरा जहाज क्रैश हो गया था, मैं जहाज से कूद गया था और नेचुरली पैराशूट खुल गया था, तभी आज मैं तुम्हारे सामने हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, सर मैं आपको इसलिए जानता हूं क्योंकि वो पैराशूट मैंने फोल्ड करके आपके जहाज में रखा था, वो पैराशूट मैंने फोल्ड करके आपके जहाज में रखा था। और चार्ल्स प्लंब हैरान रह गए कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि इतने लोग उस जहाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, इस हमारी टीम के अंदर ये व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इससे कहीं गलती होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। उस दिन चार्ल्स प्लंब ने कहा, मुझे एहसास हुआ कि हर एक टीम का हर मेंबर बहुत बहुत, जोर से ताली बजा दीजिए, उस दिन एहसास हुआ कि टीम का हर मेंबर उसे छूटने नहीं देना चाहिए। और उस दिन के बाद चार्ल्स प्लम एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और कहते हैं, मैं हर बार ये पूछता हूं, आपका पैराशूट किसने पैक किया है, आपके साथ कौन खड़ा है? लेकिन मैं तो यहां कहता हूं, हमारी टीम का मेंबर कौन है जी, हमारी टीम का मेंबर कौन है? और आपने परिवार को टीम बनाया है, लेकिन आज से एक मेंबर और जोड़ लीजिए, किसको पक्का मेंबर बनाइए फैमिली का? उस भगवान को, उस परम पिता शिव को। तो यकीन मानिए, जिस टीम के अंदर भगवान मेंबर हो जाएगा, उस टीम की जीत तो सदा पक्की है, सदा आगे बढ़ना है उस टीम में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अभी एक और अच्छी चीज, टीचिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हम एक लाइन बोल देते हैं, ध्यान दीजिए लाइन के ऊपर, एक प्लेयर जिसके कारण टीम हारी, और अगर 10 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल दिया जाए कि आपके कारण टीम हारी है, सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होने वाला है, वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। और एक बात और अगर हम ये बोलते हैं केवल आपके कारण टीम जीती है, तो पूरी टीम का एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। याद रखिए, टीम जीतती है और टीम, जोर से बोल दीजिए, टीम जीतती है और टीम ही हारती है। कभी इंडिविजुअल प्लेयर को अगर हम बहुत हाईलाइट करते हैं तो बाकी टीम को क्या एनर्जी लेवल लो हो जाता है। एक बात बड़ी, ये मुझे एक रियल घटना याद आ रही है, एक व्यक्ति जिन्होंने फुटबॉल का मैच चल रहा था, उस फुटबॉल मैच के अंदर टीम ए और टीम बी, बहुत अच्छा मैच चल रहा था, दोनों गोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी टीम जीत नहीं पा रही थी। बिल्कुल जब मैच खत्म होने वाला था, करीब 3-4 मिनट पड़े थे, तो टीम ए के जो कैप्टन थे वो टीम बी की डी में पहुंचे, वहां की डी में पहुंचकर ऐसा बढ़िया शॉट लगाया कि गोल हो गया और टीम ए जीत गई। और जब टीम ए के कैप्टन को स्टेज पर बुलाया, और उस वक्त वहां मीडिया भी मौजूद था, और मीडिया ने कहा, कैप्टन साहब आज आपके कारण मैच जीत गए। क्या कहा मीडिया ने? आपके कारण मैच जीत गए। तो उस कैप्टन ने कहा, कहते कि टीम बी के लोग कम से कम 7-8 बार हमारी डी में पहुंचे, उस वक्त किसने बचाया? हमारे गोलकीपर ने बचाया। आप कैसे कह सकते हो कि केवल मैच मैंने जिताया? और कितनी बार फुटबॉल को हमारी टीम के लोग टीम बी की टीम में लेके आए, मैंने तो बाद में किक मारी है। आप कैसे कह सकते हो कि केवल मैच मैंने जिताया? और जिस मेंबर ने मेरे को फुटबॉल का पास दिया, अगर वो पास नहीं देता तो मैं गोल कर नहीं सकता। तो आप कैसे कह सकते हो कि केवल मैच मैंने जिताया? और ऐसा बोलकर उन्होंने पूरी टीम को बुलाया, और सारे मेंबर स्टेज पर आए और सबने ऐसे हक कर लिया एक दूसरे को, और बोला, ये जीत हम सब की है, ये जीत हम सब की है, ये जीत हम सब की है। इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा ये याद रहे कि सबकी जीत है और सबकी हार है। इंडिविजुअल को बोलने से उस इंडिविजुअल का एनर्जी लेवल लो हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यहां पर एक बहुत बड़ी शख्सियत की फोटो देख रहे हैं, कौन है जी वो शख्सियत कौन है? श्री एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो बात बताने जा रहा हूं, प्लीज इसको अपने जहन में फिट कर लीजिए हमेशा के लिए, ये इनका एक्सपीरियंस है, बहुत वंडरफुल बात। श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहते कि बात है 1979 की, तब इसरो के अंदर हम एक रॉकेट बना रहे थे, और रॉकेट के अंदर एक रॉकेट बना रहे थे, रॉकेट के अंदर सैटेलाइट फिट कर दिया गया था, बहुत वर्षों से काम कर रहे थे, बस उसको आज लॉन्च करना था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, हर कोई वहां मौजूद था, और मैं उस पूरे प्रोग्राम का डायरेक्टर था, और सतीश धवन जी उस इसरो के उस वक्त चेयरमैन थे, और मुझे सारी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। लास्ट के करीब 8-10 मिनट बचे हुए थे रॉकेट के छूटने में, तो हमने सारा कंट्रोल कंप्यूटर को दे दिया, क्योंकि उस वक्त कई 100 प्रोसेस उस रॉकेट के अंदर लगातार चल रहे होते हैं, तो अकेले किसी व्यक्ति के लिए सारे प्रोसेस को देखना पॉसिबल नहीं होता। कंप्यूटर को सौंप दिया गया, कंप्यूटर एक एक करके सारे प्रोसेस चेक कर रहा है कि ये भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। कहते जी करीब 4 मिनट के बाद कंप्यूटर ने इंटरप्शन शो कर दी कि फर्स्ट स्टेज ठीक है लेकिन सेकंड स्टेज में कहीं लीकेज है। कहते कि मुझे लगा कि अब रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता क्योंकि लीकेज है। तो मैंने वहां पर अभी केवल 4 मिनट बचे हुए थे तो मैं पीछे कुछ साइंटिस्ट के पास गया जो सीनियर साइंटिस्ट हैं। मैंने उनसे राय की कि क्या करना चाहिए, क्या रॉकेट को लॉन्च कर देना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए। तो जो पीछे साइंटिस्ट थे, जो 5-6 सीनियर साइंटिस्ट थे, सबने कहा सर हमें इस प्रॉब्लम का अंदाजा है लेकिन इस प्रॉब्लम से रॉकेट को प्रॉब्लम नहीं आएगी, रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। तो कहते मैंने और सारी डिस्कशन करके लास्ट मिनट के ऊपर सारा कंट्रोल कंप्यूटर से छोड़कर मैनुअल अपने हाथ में ले लिया और मैंने रॉकेट को जाने दिया, छोड़ दिया। कहते रॉकेट उड़ा, फर्स्ट स्टेज क्लियर नो प्रॉब्लम, और सेकंड स्टेज में जैसे ही पहुंचा रॉकेट स्पिन कर गया और मुझे अंदाजा हो गया कि रॉकेट हमारे हाथ से गया और बे ऑफ बंगाल में गिर गया। कहते इतने सालों की मेहनत, इतने करोड़ रुपया लगा हुआ और अब ये समझ नहीं आ रहा कि मीडिया इंतजार कर रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। कहते थोड़ी देर बाद सतीश धवन जी से बात हुई, उन्होंने कहा तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, मीडिया को मैं फेस करूंगा। क्या कहा जी? सारी जिम्मेवारी किन के ऊपर थी? अब्दुल कलाम जी के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर वो थे, इसरो के चेयरमैन सतीश धवन जी थे। लेकिन धवन जी ने कहा जिम्मेवारी मैं लूंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ बैठो। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर धवन जी ने सबके सामने कहा इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, हमने बहुत मेहनत की है लेकिन अगली बार इससे बेटर रॉकेट बनेगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बहुत सवाल पूछे गए लेकिन सबका जवाब धवन जी ने दिया। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं मैं पास बैठा हुआ मुझे एहसास हो रहा ये ग्रेट लीडरशिप है। और कहते उनके धवन जी की इस ग्रेटनेस ने मुझे उनसे और जोड़ दिया। और कहते जब ये एपिसोड पूरा हुआ हमने उसके बाद फिर से मेहनत की, 1 साल बाद फिर से रॉकेट बनाया, फिर से उसके अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके अंदर सैटेलाइट रखा और उसको लॉन्च किया। और कहते वो शुर्र करके ऊपर और उस रॉकेट ने सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया। और उसके बाद फिर धवन जी की मुझसे बात हुई और धवन जी ने अब कहा अब मीडिया को अब कॉन्फ्रेंस आप करोगे, सबको सफलता आप बताओगे कि आपने क्या काम किया है। क्या धवन जी के लिए तालियां बजती हैं जी? ये है टीम को जोड़ना, ये है टीम को साथ लेकर चलना, ये है टीम को लीडरशिप, टीम को आगे लेकर चलना कि जब प्रॉब्लम आई तो मैं हूं तुम्हारे साथ और जब जीत गए तो बोला आप आगे चलो। ये है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऐसा करते हैं तो टीम के लोग टीम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। और अब्दुल कलाम जी ने कहा कि जो लेसन मुझे धवन जी ने सिखाया ये लेसन मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये मुझे उनके जिंदगी से सीखने को मिला। ऐसे महान लोग और हमें गर्व है भारत पर जहां ऐसे महान लोग हैं, ऐसे महान लोग हैं। खूब जोरदार तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी की जाए जी। कौन कौन एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड हैं? सब इंटरेस्टेड हैं। चलिए थोड़ी सी आपको एक्टिविटी कराते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स को आगे निकाल रहा हूं। हमें टीम के मेंबर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कभी कभी ऐसा तो नहीं आता ज्यादा तारीफ कर देंगे तो सर पर चढ़ जाएंगे? आप ध्यान दीजिए, आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना एनर्जी लेवल टीम के लोगों का और बढ़ने वाला है, उनका एनर्जी लेवल और बढ़ने वाला है। हम टीम को तो अप्रिशिएट करेंगे लेकिन आज जो आपके साथ भाई बैठे हैं, बहन के साथ जो बहन बैठी है, उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। आप सबको खड़े होना है। भाई भाई का हाथ पकड़ ले, बहन बहन का हाथ पकड़ ले, भाई भाई का हाथ पकड़ ले। लाइट्स ऑन कर सकते हैं भाई जी? लाइट्स ऑन की जा सकती हैं। मेरे को नहीं देखना है, एक दूसरे को देखना है जिनका हाथ पकड़ा है आपने। मेरे को नहीं देखना, उनको देखना जिनका हाथ पकड़ा है। मुस्कुराते हुए देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए और अब गले मिलकर बोलिए आप तो बहुत अच्छे हैं। गले मिलकर बोलिए आप तो बहुत अच्छे हैं। देखिए कितनी मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरे पे। और बोलिए आपके अंदर तो बहुत टैलेंट है। गले मिलकर बोलिए आपके अंदर तो बहुत टैलेंट है। और बोलिए आप तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। अब गले मिलकर बोलिए आप तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। और बोलिए आप तो बहुत खुश रहते हैं। गले लगाकर बोलिए आप तो बहुत खुश रहते हैं। सभी को करना है, सभी को करना है, सभी को करना है। और बोलिए आप इस परिवार के बहुत महत्वपूर्ण मेंबर हैं। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और उनके सर पर हाथ देखिए प्लीज सभी गले मिलकर बोलना है और सर पर हाथ रखकर बोलिए आपके ऊपर तो भगवान का हाथ है। आपके सर पर तो भगवान का हाथ है। और अब फाइनली गले मिलकर बोलिए आपको मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आपको मिलकर दिल बहुत खुश होता है। बजाइए ताली एक दूसरे के लिए। अब अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। कैसा लगा दूसरे को अच्छा बोलकर? कैसा लगा जी? तो ब्रह्मा कुमारीज ये बताना चाहते हैं कि यदि खुश रहना है, आगे बढ़ना है, टीम को जोड़ना है, टीम स्पिरिट बढ़ानी है, तो क्या करना है? दूसरों को अच्छा बोलना है, दूसरों को। और यकीन मानिए इससे ज्यादा फायदा दूसरे का तो होता ही है, लेकिन ज्यादा फायदा खुद को बहुत अच्छा लगता है, खुद को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम जो शब्द बोलते हैं सबसे पहले किसके कान में जाता है? हमारे कान में। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे ऊपर। यदि हम दूसरे को नालायक बोलते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ने वाला है? ऐसे करना है हाथ, किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? इसलिए कभी भी दूसरे को क्या नहीं बोलेंगे जी? और क्या नहीं बोलेंगे? अब शब्द नहीं बोलेंगे। और दूसरों को क्या क्या बोलेंगे? बोलिए क्या क्या बोलेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। और क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? उनकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट। यदि हम दूसरों को अच्छा बोलते हैं, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? हमारे को मिलता है। और अभी एक टीम के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज, हम घर में भी चार लोगों की टीम होती है ना जी? अगर घर में चार लोग हैं तो चार लोगों की टीम, पांच लोग हैं तो पांच लोगों की टीम। लेकिन आज तो कमाल हो गई, हमने किसको मेंबर बनाया अपनी टीम का? भगवान को। तो आज से आपकी टीम का एक मेंबर और बढ़ गया है। और एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं, सभी भाई बहन ध्यान देंगे। हमें ये तो ध्यान रहता है कि मैंने टीम के लिए क्या किया, मैंने आपके लिए क्या किया, लेकिन ये याद नहीं रहता कि बाकी लोगों ने मेरे लिए, ये नहीं याद रहता। यहां मैं पूछना चाहता हूं, सबको ये तो लगता है कि हमने फैमिली के लिए बहुत किया, लेकिन ये अक्सर भूल जाते हैं कि घर के लोगों ने मेरे लिए क्या किया। इसलिए आज याद करेंगे, याद करना चाहिए, याद करना चाहिए। मैं आपको घटना बताना चाहता हूं, दिल्ली रेलवे स्टेशन की, वहां प्लेटफॉर्म पर जो बुक स्टॉल्स होती हैं, मैं एक बुक देख रहा था और मैंने उस बुक सेलर से पूछा सिंपल एक लाइन कि भाई साहब किसी ने कुछ किया आपके लिए? भाई साहब किसी ने कुछ किया आपके लिए? वो बुक सेलर बोला भाई साहब यहां कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कोई खुद का ही कर ले इतना ही बहुत है, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, सब मतलब ही है यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई साहब किसने तो कुछ किया होगा। कहता नहीं भाई साहब, किसी ने कुछ नहीं किया किसी के लिए, और मेरे लिए तो किसी ने कुछ वैसे ही नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कभी आपको बुखार हुआ हो, किसी ने दवाई दी हो आपको, कभी आपको जरूरत हुई हो किसी ने आपके लिए लाइट बंद की हो, किसी ने आपको एक गिलास पानी लाकर दिया हो, आपको सर्दी लग रही हो किसी ने आपके ऊपर रजाई लाकर रखी हो। कहते हाँ ऐसे तो मेरे लिए बहुतों ने बहुत कुछ किया, ऐसे तो मेरे लिए बहुतों ने, मेरी पत्नी मेरे रोज खाना बनाती है, देखो टिफिन में खाना रखा हुआ है, मेरे बच्चे बड़ा कहना मानते हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे को घर बना कर दिया है, और जिस दुकान में मैं नौकरी कर रहा हूँ उसे किसका मालिक कोई और है, उसने मेरे को काम दिया तो आज मेरा परिवार चल रहा है, ऐसे तो मेरे लोगों ने बहुत कुछ किया है। तुरंत क्या हुआ जी, तुरंत क्या हुआ, एहसास हो गया और हमें याद रहे कि वाकई हमारी टीम के लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। अभी दो मिनट के लिए आपको खड़ा होना है और आपको याद करना है, घर के हर मेंबर को, अपनी टीम के हर मेंबर को याद करना है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। एक मिनट के लिए खड़ा होना है आपको, और देखिए आपको इतना आनंद आने वाला है इस एक्टिविटी से, ये आपका सोचने का विजन बदल देगी, नजरिया बदल देगी चीजों को देखने का। सब अपनी आंखें बंद करेंगे केवल दो मिनट के लिए, और अपने सामने अपने घर के या जो स्पोर्ट्स पर्सन यहां हैं, अपने टीम के, अपने कोच, अपने सीनियर्स, जिन जिन से आपका कनेक्शन है उनको देखिए। जो माताएं बहनें यहां हैं, जो भाई यहां हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर को अपने सामने देखें और याद करें कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। जिस किसी ने आपके लिए किया, कुछ भी किया, याद करें, किसी ने आपको थोड़ा गाइड किया, थोड़ा आपको हेल्प किया, जो भी आपके लिए किया याद करें क्या क्या किया। और जिस मेंबर ने आपके लिए जो भी किया, अब मन ही मन उनको बोलकर बताएं कि आपने मेरे लिए ये किया। जिस मेंबर ने आपके लिए जितना भी काम किया है, दो काम, तीन काम, चार काम, जितने भी किए हैं, एक एक काम को याद करें। घर में आपकी किस किसने मदद की है, परिवार फैमिली में किसने मदद की है, बाहर किसने मदद की है, किसने आपकी हेल्प की है, और उनको बोलकर बताएं आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया। अगले मेंबर को देखें, उनको देखकर याद करें कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। छोटा भी काम किया तो याद करें और उनको बोलकर बताएं आपने ये किया, आपने ये किया, आपने मेरे लिए ऐसा भी किया, आपने मेरे लिए ऐसा भी किया। सभी मेंबर सबको बताएं, सबको बताएं। सबको बारी बारी से बताएं। सबको बारी बारी से बताएं आपने ऐसा किया मेरे लिए। ओम शांति शांति शांति। हम में से किसी किन किन को याद आया कि दूसरों ने मेरे लिए कुछ किया है, किन किन को याद आया जी? सबको याद आ गया जी, कुछ किया है दूसरों ने आपके लिए? जोर से बोलिए, दूसरों ने कुछ किया आपके लिए जी? और आपने उनको बताया कि आपने मेरे लिए ऐसा किया? कैसा महसूस हो रहा था बोलकर? किनको अच्छा लग रहा था बोलते हुए जी? सच में अच्छा लग रहा तो बताइए, बजाइए ताली अपने लिए, जोरदार ताली बजाइए, और अपनी सीट ले सकते हैं आप। याद रखिए प्लीज, एक बात याद रखिए, दूसरों ने हमारे लिए क्या किया, आपकी टीम के लोगों ने आपके लिए क्या किया, और जब आप उनको बताएंगे आपको भी अच्छा लगेगा, और जिनको बताएंगे उनको तो बहुत अच्छा लगना ही लगना है। और अभी एक छोटी सी स्टोरी और उसके बाद एक फाइनल गेम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे हम। आप में से महान सिकंदर का नाम किन्होंने सुना है जी? और आपने सिकंदर की एक कहानी सुनी है, जब वो बिल्कुल मृत्युशैया पर थे, मरने वाले थे, उन्होंने तीन बातें कही थी। तीन बातें, पहली बात कि जितने वैद्यों ने मेरा इलाज किया है, जब मेरी शैया जा रही होगी तो सारे वैद्य मेरी शैया के साथ चलेंगे, उस मृत्यु जो मेरी जो डेड बॉडी के साथ चलेंगे। और जितने रतन, जितने अशर्फियां, जितने मानिक मैंने इकट्ठे किए हैं, उस रास्ते पर बिखेरते चलना जिस रास्ते पर मेरे शव को आप लेके जा रहे होंगे। और कहा मेरे हाथ बाहर रखना। तो लोगों ने पूछा ये तीन काम किस लिए? तो सिकंदर ने कहा ताकि पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाए कि जब मृत्यु आती है, जब ऊपर से मृत्यु आती है, तो दुनिया का कोई भी वैद बचा नहीं सकता। आपके कितने भी रत्न, कितने भी मानिक आपको बचा नहीं सकते, वो आपके पास पड़े लेकिन आपको जिंदगी नहीं दे सकते। और इंसान जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। ये मैसेज देना चाहते थे, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिकंदर को ये एहसास तो हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन एहसास कब हुआ सिकंदर को? जब वो मृत्यु के नजदीक था, उसे तब एहसास हुआ कि मैंने पूरी की पूरी जिंदगी धन कमाने में, राज्य बढ़ाने में लगा दी, मैंने जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाया। सोचिए आप, एहसास हमें भी होता है अपनी गलतियों का, लेकिन अगर एहसास मृत्यु के नजदीक जाकर हो तो उस एहसास का क्या फायदा? जिंदगी तो जा चुकी है ना जी, हमसे जो गलतियां हो रही हैं उसको कब सुधारना जरूरी है, कब बदलना जरूरी है? जब जीवन है। तो ब्रह्मा कुमारी यही बताना चाहते हैं कि अपने जीवन को अभी बदलिए, जो कमियां हमारे अंदर है उनको आज ही समाप्त करें। क्या कमियां हमारे अंदर है? कमियां हैं हमारे अंदर, थोड़ी हैं या काफी हैं जी? बदलने की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? कब से कर देनी चाहिए? बहुत अच्छा जी, अभी से ही कर देनी चाहिए। अपनी कमियों को एक एक करके बाहर निकालते जाना है और अपने अंदर एक एक करके गुण भरते जाना है। और जैसे डिफेक्ट बाहर निकलते रहेंगे, हम धीरे धीरे परफेक्ट बनते जाएंगे, ये भगवान बताते हैं। बहुत सुंदर लाइन। और अभी एक छोटी सी एक्टिविटी एक डांस के साथ करना चाहेंगे सभी जी, और ये टीम स्पिरिट को बढ़ाने की एक्टिविटी है। ये सिंपल डांस नहीं है जी, ये टीम स्पिरिट को बढ़ाने का डांस है। मालूम है कैसे करना है जी? इसमें आपको दो दो का या तीन तीन का ग्रुप बनाना है और कोशिश करनी है कि सबके एक्शन सेम हो। क्या कोशिश करनी है, जोर से बोल दीजिए, सबके एक्शन सेम हो। और आपको गीत को गुनगुनाने की कोशिश करनी है और ऐसे करना है, अगर दो लोग हैं तो एक दूसरे को देखकर करना है, तीन लोग हैं तो एक ग्रुप में डांस करना है, चार भी हैं तो एक ग्रुप में डांस करना है। और कंडीशन क्या है जी? सबके स्टेप एक समान हो। और कोशिश ये करनी है कि गीत को साथ साथ गुनगुनाना है। कौन कौन करेगा इसको? ये ऐसा करने से हमारी टीम स्पिरिट, टीम की भावना बढ़ती है। तो करने जा रहे हैं एक्टिविटी स्टार्ट। सभी खड़े हो जाएंगे अपनी सीट पर, सभी ग्रुप बना लीजिए, दो दो का ग्रुप या तीन तीन का ग्रुप बना लीजिए। और ग्रुप के अंदर सबकी एक्टिविटी सेम डांस होगा, सेम। तो शुरुआत करने जा रहे हैं।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।
दो ग्रुप मिलके ग्रुप में करिए एक सेम एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी करिए।
के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मिनट और कुछ मिनट और जी स्थान ग्रहण कर सकते हैं आप सभी। और अभी एक बहुत अच्छी स्लाइड कि टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए जो टीम के लोग हैं सबके पास सेम कलर की टी शर्ट होती है तो टीम स्पिरिट बढ़ती है, और सबके पास अगर पटा है, सेम कलर की कैप है या झंडा है या बैनर है, इन सब चीजों से टीम स्पिरिट बढ़ती है, टीम की एकजुट भावना बढ़ती है। और ब्रह्मा कुमारी इन बातों को बखूबी जानते हैं, इसलिए कुछ फोटोज आपके सामने हैं कि जब भी प्रोग्राम करते हैं तो लगभग हमेशा जैसे सेम कलर के पटे यहां पर होंगे, और उसके अलावा हमेशा जो भी प्रोग्राम करते हैं उसका बैनर जरूर होता है ताकि मालूम पड़े कि क्या किया जा रहा है। और साथ ही जो भी प्रोग्राम होता है उसमें झंडे अक्सर यूज करते हैं ताकि सबको एक बहुत अच्छी फीलिंग पहुंचती है। इसलिए जब भी टीम काम करे, टीम इकट्ठी काम करे, तो इस तरह के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए ताकि उस टीम की पहचान बने। और साथ ही आप टीम का मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए दौड़ सकते हैं, मैराथन कर सकते हैं, और इसी टीम स्पिरिट की भावना को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी यहां शांति वन के अंदर कई मैराथन कर चुकी हैं, उसका एक बैनर यहाँ पर आपके सामने है। तो इस तरीके से ब्रह्मा कुमारी जी कोशिश रहती है कि हर परिवार के अंदर खेल के हर सदस्य की उसकी अपनी टीम के प्रति टीम स्पिरिट, टीम की भावना बढ़े। और अभी दो लाइन मेरे साथ ताकत से बोल देंगे, परेशानियों में भाग जाना आसान होता है और हर मुश्किल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता और आगे बढ़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। तो कौन बैठे हैं जी यहां पर, कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं, हिम्मत हारने वाले कौन कौन बैठे हैं और आगे बढ़ने वाले कौन कौन बैठे हैं। ये हुई बात, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाना है और दूर तक पहुंचना है तो साथ मिलकर चलना है, टीम को साथ लेकर चलना है। और एक और यह एक बहुत अच्छी चीज है जो बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो प्लेयर्स, जो खिलाड़ी मैदान के बाहर अच्छे दोस्त हैं, जिनकी अच्छी बनती है, उनकी खेल के मैदान में भी अच्छी बनती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है और वो टीम को बहुत आगे ले जाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करे तो टीम के लोगों के अंदर क्या जरूरी है, फ्रेंडशिप, दोस्ती जरूरी है। उनको खेल के अलावा ऐसा काम कराया जाए जिसका उस खेल से कोई लिंक नहीं है। मान लीजिए आपने देखा होगा जब क्रिकेट की टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, उनको फुटबॉल खिलाया जाता है, उनको ये जरूरी है टीम को अलग गेम खिलाया जाए ताकि आपस में इंटरेक्शन का बढ़े, फन गेम कराने चाहिए, उनको घुमाना फिराना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़े। और यहाँ कुछ एग्जांपल हैं हमारे सामने, लेंडर पेस और महेश भूपति का, जिनकी दोस्ती के बारे में सुना होगा आपने, और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि जब उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, उन्होंने 25 एटीपी टाइटल्स जीते थे और 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे। जब दोस्ती अच्छी होती है तो मंजिल करीब आ जाती है, और दोस्ती बहुत मशहूर हुई है इन क्रिकेट प्लेयर्स के नाम जानते हैं जी आप, तेंदुलकर एंड दादा या गांगुली जी कह सकते हैं। देखिए इनकी फ्रेंडशिप मैदान के बाहर इतनी अच्छी थी और उसका रिजल्ट मैदान के अंदर ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये दुनिया के सबसे सफलतम बैट्समैन ओपनिंग के अंदर रहे हैं। करीब 136 बार इनको ओपनिंग करने का मौका मिला है और उनके अंदर करीब 6609 रन बनाए हैं, जो सबसे ज्यादा रन है ओपनिंग के अंदर। और इनकी बहुत अच्छी एवरेज है 49.2, यानी कि जो खिलाड़ी मैदान के बाहर अच्छे दोस्त हैं, मैदान के अंदर भी बहुत अच्छी जमती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सबकी मैदान के बाहर भी बहुत अच्छी दोस्ती हो, बाहर किसी में तकरार नहीं हो। और अब सबसे बढ़िया और आखिरी स्लाइड, अपनी टीम के अंदर खूब मजाक भी करना चाहिए। मुस्कुराकर बोल दीजिए, टीम के अंदर मुस्कुराना भी चाहिए, कोई चुटकुला कोई ऐसी बात बोल देनी चाहिए जिससे टीम के अंदर खुशी आए। तो मैं एक चुटकुला बोलकर इसको पूरा करने जा रहा हूं, जिनको समझ आ जाए उनको तो हंसना ही है, जिनको नहीं समझ आए उनको और ज्यादा हंसना है। एक बार एक भाई जा रहे थे और रास्ते में एक मिठाई की दुकान देखी, सोचा यहां पर रुककर कुछ खा लिया जाए। और जैसे मिठाई की दुकान में पहुंचे तो लड़का बैठा, करीब 18-19 साल का लड़का, और सामने रखी हुई थी पूरी बड़ी प्लेट, उसमें रखे हुए थे रसगुल्ले और इतने बढ़िया लग रहे थे। तो उन भाई साहब ने एक रसगुल्ला तो वहीं उठाकर खा लिया और कहा बड़ा स्वाद है। काके कितने रुपए किलो है? उसने कहा जी 100 रुपए किलो। तो कहा ऐसे कर पाइया प्लेट में डाल दे और पाइया मेरे लिए पैक कर दे। उस लड़के ने तुरंत पाइया रसगुल्ले प्लेट में डालकर उनके सामने रख दिए और पाइया पैक करने शुरू कर दिए। और जब इतने में पैक किए और भाई साहब को तो इतने स्वाद लगे रसगुल्ले, उन्होंने तो 2-3 मिनट के अंदर सारे रसगुल्ले खा लिए। और फिर बोले काके बनाए बड़े स्वाद है, किवे बनाते तेरे पापा, किवे बनाते तुसी? कहते तो पापा को पता कैसे बनाते हैं, मेरे को नहीं पता कैसे बनाते हैं। कहते मैं थोड़े को, फिर वो भाई बोले मैं तुम्हारे पास अक्सर आके अब रसगुल्ले लेकर जाया करूंगा। बच्चे ने कहा हाँ जी जब मर्जी आओ, बहुत रसगुल्ले यहां पर है। तो भाई ने कहा अच्छा एक बात बता, इतने रसगुल्ले तेरे सामने हैं, तेरा दिल नहीं करता खाने का? तो उस बच्चे ने कहा दिल तो करता लेकिन पापा ने गिन के रखे हुए हैं, इसलिए चूस के वापस रख देता हूं। इसलिए अपनी टीम के अंदर हंसना भी चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए और खुशियां मनानी चाहिए। इसी के साथ ही इसको पूरा करते हैं। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।